الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام تجارت، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام بزنس، ذرائع آمدنی اور تجارت کے جو مسائل ہیں ان کے لیے ہے. انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ تو انسان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ضروریات کے گرد چل رہا ہوتا ہے، صبح و شام، بچے، آرام، کھانا پینا، عبادات کی ادائیگی، حاجات شرعیہ، حاجات طبعیہ، حاجات دنیاویہ، ان کی تکمیل کے لیے انسان دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے. اور انسان کے جو حاجات ہیں، اس کا دار و مدار جو ہے وہ ذرائع آمدنی پر ہے. آپ کے پاس لباس نہیں ہوں گے تو آپ جو ہے وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ زکوٰۃ کا نکالنا موقوف ہے مالی حیثیت پر، حج کا ادا کرنا موقوف ہے مالی حیثیت پر، یعنی حج کی فرضیت کی بات ہو رہی ہے. تو مالی جو معاملات ہیں، جہاں انسان ان کے ذریعے عبادات بجا لاتا ہے، ان کے ذریعے جو ہے وہ تمام حاجتیں پوری کرتا ہے، تو وہیں پر انسان مالی ذرائع اس کے کیا ہیں، مال کس ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، اور مال حاصل کرنے کے تعلق سے کہیں اس سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہو رہی، یہ ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے. اور فقہ کرام کی اگر ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو فقہ کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ لین دین کے جو مسائل ہیں وہ عبادات سے بھی زیادہ ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، عبادات کے چیپٹر تو چند ہیں لیکن لین دین کے جو چیپٹر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور آج کے دور جدید کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ مالی شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے. یعنی وہم و گمان نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسے ایسے طریقے جو ہے وہ تجارت کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک فیلڈ کو اٹھائیں تو اس فیلڈ کے بھی نہ جانے کتنے انڈے بچے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر آن لائن ٹریڈنگ ہے. آن لائن ٹریڈنگ یا ای کامرس کوئی ایک لفظ نہیں ہے یا دو لفظ نہیں ہے، پوری دنیا ہے. اس میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، چیٹنگ بھی ہے، اس میں ایک سے بڑھ کر ایک امانت دار، وعدے کا سچا اور جو بات کہی اسے پورا کرنے والا بندہ بھی موجود ہے. لیکن جس فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں، یعنی کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو جن کا حرام ہونا واضح ہے. اب شراب ہے، جوا ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، ان کا ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں جائز امور ہیں، ان جائز امور کے اندر بھی طریقہ کار کی غلطی کی وجہ سے، طریقہ کار کے میں خطا ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ سرزد ہو جاتی ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے. ہمارے مہروز بھائی سے ہم کچھ سنتے ہیں، دو پاک فضیلت عام طور پہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں کنٹینیو رکھتا ہوں.
چلے جی، مدنی چنگانی سلسلے کی تو شروعات ہو گئی، میں درود پاک کی فضیلت بھی بیان کر دیتا ہوں اور پھر مفتی صاحب کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے آپ کنٹینیو کریں گے یا سوالات
جو گفتگو چل رہی تھی ہماری؟
جی،
اس پر ایک بات ذہن میں آ رہی تھی.
جی،
جیسے ہم جو ہے وہ IFC کورس کروا رہے ہیں.
جی،
اسلامک فائنینس کورس.
جی،
اسلامک فائنینس کورس کے اندر ہم نے کن کو داخلہ دیا؟ ایک طرف تو ہمارے علماء تھے،
جی،
فارغ التحصیل حضرات.
جی،
کہ دورہ جدید کے اندر کیا کچھ شکلیں اس کی واقع ہو چکی ہیں، یہ وہ سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور دوسرا ہم نے داخلہ دیا اسی کلاس میں، یعنی ایک کلاس کے دو رنگ ہیں، ایک طرف علماء ہیں، ہدایہ پڑھانے والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختصاص کیا بزنس کے اندر، فائنینس کے اندر، یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اس میں MBA کیے ہوئے لوگ ہیں، SSC کیے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ دو کیٹیگری ہیں.
یعنی مسلم یوں کہیں تو ایک دینی ماہرین اور دوسری دینی ماہرین، یا جنہوں نے دین کی طرف کوشش کی، وہ ہے دین پڑھا ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے मार्केट, बिजनेस, फाइनेंस पढ़ा है, दुनिया पढ़ी है, तो अब इन दोनों को एक ही जगह पर मर्ज कर दिया गया, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं।
एक साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक साथ बैठे हुए हैं, मिलकर बैठे हुए हैं। हर हफ्ते 2 क्लासें हो रही हैं वीकेंड पर। तो अब ये जो खास तौर पर जिन्होंने सीए किया, कोई आसान है सीए करना?
मुश्किल ही है, यही कहा जाता है,
बहुत मुश्किल है
जी।
या एमबीए फाइनेंस है, इन्होंने तो पढ़ाई फाइनेंस है, बिजनेस को कैसे जो रन करना है और इन्वेस्टमेंट को कैसे जो है ना वो लेके चलना है। तो ये लोग सुनकर हैरान हो रहे हैं, अच्छा अच्छा, मतलब हर टॉपिक के अंदर एक नया चैप्टर होता है। हमने मुराफा बयान किया, सलम बयान किया, रिबा को पूरा तफसील के साथ बयान किया, इसी तरीके से वकालत का क्या तस्वर है, मतलब बंदा खुद बहुत सारे तसरुफात अंजाम में देता, उसके नुमाइंदे अंजाम देते हैं, गारंटी को बयान किया, गारंटी का क्या तस्वर है, हवाले का क्या तस्वर है। तो यूं शिरकत, मुदारबत, इन्वेस्टमेंट के जो और जो मोड हैं उनको बयान किया। तो यकीनी तौर पर ये कोर्स इनके लिए नेमत है। उनके साथ जब हम बैठ रहे हैं और ये लोग जिस अंदाज में अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं, तो हमें इस बात का इदराक हो रहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमारे कानों से भी नहीं गुजरती,
ठीक,
जिनकी तालीमात का हिस्सा है। भाई एक बंदा बिजनेस नहीं कर रहा
जी,
लेकिन उसके बाप ने तो जायदादें छोड़ी हैं,
तो ये विरासत में तो मिली है,
विरासत के तो मसाइल हैं
जी।
उसको पता तो शिरकत मिल्क क्या होती है, शिरकत मिल्क के क्या मसाइल होते हैं, शिरकत मिल्क के अंदर इस्तेहकाक का क्या मामला होता है, उस तरह का चीज को जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो शिरकत पर हमारे 2 लेक्चर हुए इसके अंदर, और एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का होता है। तो उनके तासुरात ही अलग हैं। कहने का मकसद ये है कि ये इतनी बड़ी दुनिया है, दीनी जरूरी मालूमात इसका हासिल करना हर उस बंदे पर फर्ज है जो इसके मुतालिक है। तो इस शोबे को बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए। ये कोर्स तो हमारे इख्तिताम पर है, अल्लाह ने चाहा तो ईद के बाद इसका तीसरा बैच जो है ना उसका आगाज होगा। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं।
आपने फरमाया कि 2 तरीके के अफराद हमने इसमें जमा कर दिए हैं। एक वो है जिनका उड़ना बिछोना या जिनकी जिनकी पिछली सारी लाइफ जो है वो दीनी तालीम में गुजरी थी, वही उनका मुंतहा नजर था, एक वो अफराद हैं। दूसरे वो हैं जिन्होंने दुनियावी तालीम के एतबार से फाइनेंस मार्केट या इस तरीके की कोई बिजनेस एजुकेशन हासिल की थी, वो अफराद। ये ख्याल क्यों आया, इनको जमा कैसे किया? दूसरी बात ये, इसी के साथ ही कर देता हूँ अगला सवाल भी ताकि उसी में शामिल हो जाए, कि 2 बिल्कुल मुख्तलिफुल ख्याल अफराद आपने जमा कर दिए, तो ये अंदेशा नहीं हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए?
देखिए, कोई भी जो आइडिया है वो जरूरत के तहत ही जहन में आता है। जब जरूरत सामने आती है तो फिर उसका हल तलाश किया जाता है। और दोनों ही जो तबकात हैं, यानी एक बंदा वो है जिसने ये तो पढ़ा है कि सूद जो है ना वो कैसे हासिल करना है
जी,
सूद नहीं लेंगे तो जो है ना वो मनी की वैल्यू खराब हो जाएगी और बिजनेस के तौर तरीके, एग्रीमेंट, सब चीजें, लेकिन शरीयत उसने नहीं पढ़ी।
ठीक,
हालांकि मतलब दावत इस्लामी की बरकत से लोगों को दीनी जहन मिला है,
ठीक है,
क्या हलाल क्या हराम ये जाने सीखे।
तो
ये लोग प्यासे थे, हमने तो जो है ना आधे से ज्यादा लोगों को तो दाखिला नहीं दिया
सीटों की वजह से,
जिनकी रिक्वेस्टें आई हुई थी हमारे पास, आधे से ज्यादा को नहीं दिया हमने दाखिला।
ठीक
है भाई, हमारे पास जितनी सीट है हम उसके मुताबिक दाखिला दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे वो जो अफराद हैं जो दीनी हल्के हैं, खासतौर पर हिदायत पढ़ाने वाले अफराद हैं, हिदायत किताब है फिक्र की, जो दरस निजामी की सबसे आला किताब तसव्वुर होती है फिक में,
फिक के एतबार,
और 3 से 4 साल तक तलबा इसको पढ़ते हैं मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, हर जगह पर एक अपडेट होती है।
सही,
आप खुद को रिफ्रेश करें,
सही,
अपनी मालूमात बढ़ाएं, मुख्तलिफ इम्तहान होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो ये उनका एक उनको अपडेट करने का एक तरीका है कि आज के सिनेरियो में क्या करना है उनको।
ठीक है, जज़ाकअल्लाह मुफ्ती, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। हमारे ये कोर्स इंशाल्लाह चल रहा है, मुफ्ती साहब ने जैसे नवीज सुनाई है, इंशाल्लाह खुशखबरी सुनाई है कि ईद के बाद एक और इसका जो बैज होगा वो शुरू किया जाएगा। आप भी जिस फील्ड से भी हैं, ये कोर्स अगर करना चाहते हैं, ये कोर्स और दीगर कोर्सेज करना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए मुख्तलिफ अफराद के लिए, जिसको जैसी ज़रूरत है तो उन कोर्सेज में एडमिशन लीजिए। और ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फैजान ऑनलाइन अकेडमी हमारी, उसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो इनिशियल स्टेज पर वो भी किए जा सकते हैं और फिर ऊपर जाकर इस तरीके के कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं और पहली कॉल शामिल है, सिलसिला करते हैं। जी
احکامی تجارت میں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب ہم بعضوں کا کچھ خریدنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر بک اسٹال پہ گئے، وہاں سے بک جو ہے وہ پرچیزنگ کے لیے ہم گئے. اب بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جو دکاندار ہوتا ہے اس کے پاس فی الوقت وہ بک اویلیبل نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو منگوا کے دے دوں گا کچھ دنوں میں، تو وہ ہم سے ایڈوانس میں کچھ پیسے جو ہے نا رکھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ 100 روپے یا 200 روپے. تو یہ جو ایڈوانس وہ جو ہے وہ لیتا ہے، کیا اس کا لینا جائز ہے شرعی طور پہ؟
دیکھیں، عام جو خرید و فروخت ہے اس کے اندر تو یوں ایڈوانس نہیں رکھا جا سکتا. اگر آپ کو بیت سلم کے مسائل آتے ہیں تو بیت سلم کی شرائط اگر پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہو آج بھی، اور جس دن ڈیلیوری ہونی اس دن بھی اویلیبل ہو، اور کم از کم 1 مہینے کی ادھار ہو، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ وہ تھوڑے سے پیسہ رکھ لے گا، پوری پیمنٹ پہلے لے گا، بیت سلم میں ہی ہوتا ہے. بیت سلم میں ایڈوانس لینے کا تصور موجود ہے، جو باقی سودے ہیں ان میں یوں نہیں لیا جا سکتا.
اگلی کال دیجیے.
ہمارا نا کپڑے کا کاروبار ہے، تو ہمارے نا جو کپڑے کے تھان ہوتے ہیں نا اس پہ لکھا ہوتا ہے یعنی کہ یہ 20 میٹر ہے 25 میٹر ہے، اسی حساب سے ہم اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. لیکن جب وہ پیمائش کرتے ہیں اس میں اکثریت آدھا میٹر پونا میٹر کپڑا زیادہ نکلتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
کپڑا تو فیکٹریوں سے بن کے آ رہا ہے آج کل، تو جو ہے وہ بڑی جدید جدید پیکنگ کی مشینیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں کپڑے کو کاٹنے کے، لیزر کٹنگ تک آ چکی ہے. آدھا پونا میٹر اگر زیادہ نکلتا ہے تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا آٹا دال وغیرہ،
جی جی،
اگر پاؤ پاؤ تلے جائیں تو ان میں تھوڑی سی کمی آتی رہتی ہے.
ٹھیک.
تو ایسے ہی اگر کوئی جو نا وہ 1.5 میٹر 2 میٹر 4 میٹر جب سوٹ پہ کاٹے گا تو تھوڑا سا جو نا کپڑا عام طور پہ زیادہ دیا جاتا ہے، گاہک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی تھوڑا سا اضافہ تو کرو. تو وہ اس تناظر میں جو ہے وہ تھان بیچنے والا، بنانے والا، پیکنگ کرنے والا، فیکٹری والا ہے، وہ تھوڑا سا زیادہ جو نا وہ ڈالتا ہے اس کے اندر. تو اگر ان کی طرف سے ڈالنے کا عرف ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، کوئی ایشو نہیں اس میں.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
شرکت بالعقد اور شرکت بالعمل کے بارے میں بتا دیں.
شرکت کی 3 اقسام ہیں. ایک شرکت ہوتی ہے شرکت ملک، جیسے کسی کا انتقال ہوا، جو کچھ اس نے چھوڑا، ورثہ جو بھی ہیں وہ مالک بن گئے اپنے اپنے حصے کے مطابق. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بیچنے کے لیے نہیں لیے انہوں نے، مطلب ایک تو کوئی معاہدہ بھی نہیں کیا، آج خود مالک بن گئے. شرکت ملک میں ضروری نہیں کہ معاہدہ نہ ہو، معاہدہ ہوتا بھی ہے. جیسے بلڈر ہے، 2 بلڈروں نے مل کے پلاٹ خریدا ہے، پلاٹ بیچنے کے لیے نہیں ہے، رکھنے کے لیے ہے. اب جو ہے وہ اس پر یہ بلڈنگ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ بلڈنگ میں فلیٹ بنیں گے، فلیٹ میں فلیٹ بیچے جائیں گے، بلڈنگ بھی تابع ہو کے بیچی جاتی ہے. خیر، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، 2 آدمی مل کے جو جانور لے لیے کہ چلو بھائی دونوں خرید لیتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر شرکتیں ملک ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ چیز ہم پیسے ملا رہے ہیں، چیز لیں گے بیچیں گے، لیں گے بیچیں گے، ایسا نہیں ہوتا. شرکت عقد یہ ہوتی ہے جو بزنس میں عام طور پر ہوتی ہے، 2 فریق مل کے پیسے ملاتے ہیں اور پھر کاروبار کرتے ہیں. شرکت اعمال جو ہے وہ تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، جیسے ہمارا مدنی چینل ہے، ہم نے خدمات لی ہوئی ہیں سیٹلائٹ والوں سے، تو سیٹلائٹ والوں کی جو خدمات ہیں یہ کوئی جو ہے وہ مجموعہ ہے تقریباً، غالب پہلو اس کے اندر اعمال کا ہے. ایکسپرٹیز جب آپ کسی کی لیتے ہیں، کسی آڈٹ فرم کو آپ نے ہائر کیا ہے جناب آڈٹ کریں، تو وہ آ کے کیا کرے گی؟ آپ کی کمپنی تھوڑی بیچے گی، اپنا مال تھوڑی بیچے گی. وہ آ کے جو ان کے پاس اسکلز اور ایکسپرٹیز ہیں وہ آپ کو آ کے فراہم کریں گی. 2 ڈاکٹر مل کے بیٹھ جاتے ہیں، 2 درزی مل کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ شرکت اعمال کی صورت ہوتی ہے. ریل اسٹیٹ بروکر جو ہے نا 2 مل جاتے ہیں ہم کام کریں گے، تو شرکت اعمال کی صورت ہے. تو یہ خلاصہ ہے اس کا.
چلیں اگلی کال دیجیے.
حضور میرا سوال ہے، اس میں جو پیسے رکھنے سے منت ملتے ہیں ان کا استعمال کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا یہ ناجائز؟
موبائل کمپنیوں میں جو پیسے رکھنے کی وجہ سے منٹس ملتے ہیں وہ سود ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے. ایسا اکاؤنٹ بھی نہ کھلوائیں جس میں لازمی لازمی ملیں اور آپ کو خرچ بھی کرنا پڑے.
اگلی کال دیجیے.
अगर पार्टनर बन रहे हैं तो पार्टनर की बुनियाद क्या होनी चाहिए? अगर एक आदमी की मिल्कियत हो और दूसरा आदमी मजदूर हो और मजदूरी करके पार्टनर बना जा सकता है? बराए करम जवाब इरशाद फरमाइए। जज़ाकअल्लाह खैरा।
पार्टनर बनने की दो सूरतें होती हैं, या तो दोनों का पैसा हो या एक का पैसा हो, एक की मेहनत और मजदूरी हो, पार्टनर बना जा सकता है। लेकिन किस चीज में पार्टनर बनना है, क्या काम करना है, ये देखा जाएगा ना। मिसाल के तौर पर एक आदमी बोले कि जी मुझे ठेले की जरूरत है, बस आप ठेला मुझे खरीदो और मैं आपको पार्टनर बना लेता हूँ। ठीक है
जी,
तो भाई ठेले की बुनियाद पर थोड़ी आप पार्टनर बनेंगे, वो तो आपको पैसा देगा, फिर आप उस पैसे से जो भी चीज बेचनी है वो खरीदेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, कारोबार बढ़ेगा, नफा होगा, वो आप तकसीम करेंगे। तो यूं दो किस्में हैं, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो इसकी तफसील भी होगी, आपको पूछना भी पड़ेगा फिर उलमा से।
अगली कॉल दीजिए।
मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अतारी है, मैं जिला उकाड़ा के गांव से अर्ज कर रहा हूँ। मैं एक दुकानदार हूँ, सवाल मेरा ये है कि एक चीज मैंने 5 रुपए में खरीदी, तो अब उसकी मैं बेचता हूँ 10 रुपए में, तो पीछे रेट बढ़ गया, अब उसका रेट है 8 रुपए, तो जकात का मैं हिसाब किस तरह करूँगा? 5 रुपए में करूँगा, 8 रुपए में करूँगा, या जितने की मेरी बिकेगी उतने का करूँगा?
देखिए, माल की जो वैल्यू लगाई जाती है ना, वो करंट वैल्यू लगाई जाती है, न खरीदने का हिसाब होता है न बेचने का हिसाब होता है। अब सोना किसी ने खरीदा होगा, आपकी वालदा मोहतरमा के पास भी सोना होगा, उन्होंने खरीदा होगा 2000 रुपये तोला, और आज सोना है कोई 1,20,000 रुपये तोला, इतना ही होगा
जी
तकरीबन
कमोबेश।
तो अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई 2000 रुपये खरीदा था तो उसी का रेट सामने रख के ज़कात देनी है। जिस दिन ज़कात फर्ज हो रही है आप पर, उस दिन जिन चीज़ों पर ज़कात है उनकी माली हैसियत और माली वैल्यू का अंदाज़ा उस रेट से लगाना ज़रूरी है। तो एक बात तो तय है, चीज़ की वैल्यू बढ़ गई है, अब वो ख़रीदारी में भी आपको भी 5 रुपए की नहीं मिल रही, तो 5 का हिसाब कैसे लगा सकते हैं?
ठीक है,
8 से कम तो नहीं लगा सकते, ये बात तय है। लेकिन 8 लगाएं के 12 लगाएं,
10 लगाए, 12 लगाए, जितने की बिक्री है।
बिक्री है तो कम से कम जो आपको पड़ी है, पड़ी समझा दी कि आज अगर आप खरीदेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू आज ही है खरीदारी की, इससे नीचे तो आप नहीं जा सकते। लेकिन बेहतर यह है कि बेचने और खरीदने का जो औसत है उसको सामने रखते ज़कात की अदायगी की जाए।
अगर कोई रिटेलर ज़कात निकाल रहा है किसी भी कारोबार में, वो रिटेलर का काम करता है, तो वो कम से कम होलसेल प्राइस लगाए, कम से कम जो मार्केट में आज के होलसेल प्राइस हैं वो लगाए,
करंट वैल्यू के हिसाब से लगाए।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कर्ज पर इस तरीके से नफा उठाए कि जो शख्स मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपए का कर्ज मांगने आया है, तो हम उसको कर्ज देने से पहले 2-3,000 रुपए की कोई चीज बेचते हैं, मसलन एक छोटा सा 10-20 रुपए का पेन है, वो हम उसे 2-3,000 में बेच दें, और ये बेचने के बाद हम उसे 1,00,000 रुपया कर्जा देते हैं, और फिर वो मखसूस वक्त के बाद यानी 1 महीने के बाद वो हमें 1,02,000 रुपए दे, तो क्या इस तरीके से कर्ज पर नफा उठाने का जवाब मौजूद है?
देखिए, जब आप कर्ज पर नफे की बात करते हैं तो आप रेड बाउंड्री में दाखिल हो जाते हैं, एक ऐसी जगह दाखिल हो जाते हैं जहाँ कांटे हैं, दलदल है, गहराइयाँ हैं, खाइयाँ हैं, कुएं हैं, आप किसी भी वक्त स्लिप होकर गिर सकते हैं। जब इतना नाजुक मामला हो तो फिर आंख बंद करके तो नहीं जाएंगे ना आप। ऐसे किसी भी मामले को अटकल पिच्चू से या मोटे मोटे आइडियाज से आप डिस्कस ना करें। उलमा ने तरीके बहुत सारे बताए हैं, बल्कि हमने तो लिखकर भी दिए हुए हैं लोगों को, दारुल इफ्ता लाइसेंस फ़ोन करें, लिखा हुआ जो तरीका है वो आप मंगवाएं, आपको मेल आ जाएगी, या हमारा ईमेल एड्रेस है darulifta@dawatislami.net, तो इस ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल भेजें, जनाब सूद से बचने का जो तरीका है वो मुझे मेल कर दिया जाए, तो आपको लड़ना चाहता हूँ मेल कर देंगे। जो तरीका उलमा ने बताया है और समझाया है वो करना जरूरी है, वरना बाजू का ये होता है कि बंदा जो है ना वो एक्सपर्ट तो होता नहीं है, जी, अब एक साहब ने जो है ना वो इसी तरीके से कोई दुरुस्त तरीका अपनाया, छह महीने बाद पैसे वापस करने थे।
सही।
अब उसके बाद छह महीने के बाद भी एक डील करनी थी, वो भूल गए, अब अड़ गए, नहीं जी मुझे तो पैसे चाहिए। भाई किस चीज के पैसे, सूद खाओगे आप, उसको समझना है बात। तो यूं जब बंदा अपने तौर पर कर रहा होता है तो बहुत सारी खराबियां सामने आती हैं, और ये रेड जोन है, आप वहां जा रहे हैं जहां सूद की बातें हो रही हैं, तो वहां तो एहतियात ज्यादा बनती है।
कॉल लीजिए।
उसके साथ सवाल ये है कि एक शख्स ने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं, मैंने उससे ये कहा कि मैं खेतों से आपका माल खरीदूंगा और फिर आपसे हैंड ओवर करके आपसे 55 में खरीदूंगा एक महीने के बाद। तो सवाल मेरा ये हिसाब से कि जो आने जाने के खर्चे होंगे दूसरे शहर, वो कौन देगा, और क्योंकि मैं अपना माल भी खरीदूंगा तो क्या किस तरह तक लिए जाएंगे सर?
आप जब उनका माल भी खरीदेंगे और अपना भी खरीदेंगे तो तनासुब के हिसाब से खर्चा डिवाइड किया जा सकता है। जो खर्चा आपका जो है वो आता है, आपने कितना माल खरीदा होगा, उनका कितना होगा, उस रेशियो को सामने रख के खर्चे की पहले से बात कर ली जाए, या लमसम मुकाया भी जा सकता है कि जरा हम खर्चे को इस रेशियो से तकसीम कर लेते हैं, जो आप दोनों का इत्तेफाक हो किया जा सकता है।
और वो पहले वाली जो इन्होंने बात की कि 50,000 वो उन्हीं से कर्ज ले रहे हैं, उनके लिए सामान खरीद के ला रहे हैं, उनको 55,000 का बेच रहे हैं,
उनको कब्जा दे दिया, माल उनका हो गया,
ठीक है,
ठीक है,
तो आप 55
अब उनसे खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, मुझसे पीछे जो बात थी मेरी वो कहीं और चली गई, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था आपके जरिए से हो जाएगी बात तो ज्यादा अथेंटिक भी होगी, लोग कबूल भी करेंगे। वो ये कि बाज़ूकात यूँ होता है, जैसे आप भी मसाइल बयान करते हैं, कभी कभी आप उसूल भी बयान कर देते कि ये इस उसूल की वजह से यूँ है, तो बाज़ूकात को देखने में आया कि लोग ना अप्लाई कर रहे होते हैं। अभी जो पिछला जवाब आपने इरशाद फरमाया वो पेन वाला, उसमें इसी तरफ आप तवज्जो दे रहे थे, तो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है एक आम मुसलमान, आम फर्द, और कहाँ पे नहीं, शरई फिकही मसाइल में बिलखसूस?
देखिए जब से फोन और व्हाट्सएप आए ना
जी,
लोगों की रसाई भी बढ़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
ठीक है,
जहां गलत मवाद की वजह से लोग कंफ्यूज हुए, यह हलाकत भी है।
सही,
लोगों ने चलकर आना छोड़ दिया है।
ठीक,
बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें आपको सीखना होता है।
ठीक है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है,
सीखना होता है आपको।
ठीक,
आप आमने सामने बात करें,
ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है,
ठीक है ना। बंदे ने मैसेज किया, उसका यूं 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 यूं, मैंने कहा भाई ये ऐसा मसला नहीं है कि आप मैसेज भेजते रहे मैं जवाब देता रहूं, कन्वर्सेशन जरूरी है, कम से कम फोन करो। मसला यह था कि जी एक ऐप डेवलपर है और ऐप डेवलपर को तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह उसको जो मिलती है उसको साथ में एक और पैकेज मिलता है कि जनाब कंपनी इतने फीसद शेयर आपको देगी आप जॉब करते रहेंगे। तो मैंने पूछा कि जनाब आप अगर पहले साल छोड़ देंगे तो? कहते नहीं, वो असल में 4 साल का एक पीरियड है, मिसाल के तौर पर 100 शेयर देने अगर उसने, तो उसने 25-25 शेयर 4 साल में तकसीम कर दिए।
ठीक,
जितने दिन आपने जॉब की उतने ही आपको शेयर दे देंगे।
ठीक है,
तो अब ये जो शेयर कंपनी का देना था ये दरअसल उजरत का एक हिस्सा है।
ठीक,
कैश इतने देंगे और शेयर इतने देंगे, फिर उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि कंपनी ने पहले दिन ही लॉक कर दिया कि ये $2 के हिसाब से आपको हमने शेयर देना है 4 साल के दौरान।
ठीक है,
वो अप डाउन नहीं होगा।
सही,
अब जो कोई कंफ्यूजन हो सकता था वो दूर हो गया। अब इस बिल्कुल एक नया और जदीद और एकदम लेटेस्ट सवाल, ठीक है, तो अब वो सिर्फ मैसेज पे पूछते रहते हैं तो ना मैं समझ पाता उनकी बात, ना वो मेरी बात समझ पाते।
ठीक,
तो बाज़ूकात कन्वर्सेशन जरूरी होती है, फोन पर भी चीजें निमट जाती हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल में आके सीखना पड़ता है। इस जज्बे को बेदार कीजिए कि या तो आप बोलते हैं यार मोहल्ले के इमाम से पूछ लिया काफी है।
ठीक,
हर मसला ऐसा नहीं है जो वो बता सके, समझा, बाज़ूकात बता देगा समझा नहीं सकेगा।
ठीक,
उसने बता दिया बारिशत में लिखा है यूं है।
ठीक,
अब आप उस पर सवाल करेंगे मेरे बिजनेस में तो यूं होता है, वो उसका एक्सपर्ट नहीं है।
ठीक,
वो उसकी तशरीह नहीं कर सकता, उसके और जो नतायज हैं उनको बयान नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सपर्ट्स के पास आना पड़ेगा।
उसे तो करना भी यही चाहिए
जी। हाँ,
ना बताए आगे।
अच्छा, 3-4 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो गुजारा कर लेती है, यहाँ से पूछ लो वहां से पूछ लो, हमें कई मैसेज आ रहे होते हैं यार ये किसी से पूछ दो ना, इस तरह के आ रहे होते हैं, वो गुजारा कर रहे होते, चलो अच्छी बात है, पूछने का जज्बा तो है फिर भी। एक वो होते हैं जो कहते हैं कोई हमें आए सिखाने,
ठीक है, हम कुएं के पास नहीं जाएंगे, कुआं हमारे पास आए।
अगर उसकी कोई कंपनी इतनी बड़ी, इतना बड़ा कोई काम है,
सेटअप,
ठीक है, किसी माहिर मुफ्ती की खिदमत हासिल कर ले, कोई मना तो नहीं है ना,
सही,
लेकिन कुछ है ही नहीं वहां पे,
सही,
दो सवाल पूछ के आप उसको वापस भेज दोगे, ये तो इल्म की तोहीन है, ये तो उलमा की कदर नहीं है, आपको पूछना है तो आप चल कर जाए। तीसरी कैटेगरी वो है जो चाहती है बस फोन पे पूछ लू, मैसेज पे पूछ लू, ये है, जाना पड़ेगा, जज्बा होना चाहिए। इल्म के जो रास्ते में होता है, फरिश्ते पर बिछाते हैं उसके नीचे, चूंटियां दुआएं करती हैं, बिलों में जो जानवर होते हैं हशरात वो दुआएं करते हैं, वो बंदा जो है राह खुदा में शुमार होता है, फजीलत कितनी है उसकी। और फिर एक बात सीखने जाते हैं आप, चार बात सीख कर आते हैं, तो सीखने का जज्बा पैदा करें, इसी में भलाई है।
चलें जी, कॉल दीजिए हमें।
मेरा मुफ्ती साहब जी बारगाह में ये अर्ज है कि पिछले प्रोग्राम में ये मसला पेश हुआ था कि गंदम की जो पिसाई है वो उस आटे में से नहीं देनी। मैंने एक चक्की वाले से बात की कि आप हमसे जो ना वो लिया करें, इसकी उजरत पैसों की शक्ल में लिया करें। वो कहता है कि अगर आप मजदूरी इसकी दे देंगे ना पैसों की शक्ल में, तब भी मैं कटौती करूंगा, क्योंकि गंदम जो है ना वो खुश्क और गर्म होकर कम हो जाती है वजन, एक मन के पीछे जो है ना वो 39 किलो रह जाती है, इसलिए मैंने 1 किलो वो आपके कटौती करनी है। तो पूछना ये था कि इस तरह चक्की वाले का कटौती करना जायज है या नहीं जायज।
हमें बहुत खुशी हुई कि आपने एक प्रोग्राम देखा, मसला न सिर्फ सीखा बल्कि उस पर अमल करने की सही और कोशिश भी की, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। देखिए, गंदम में दो मसले आते हैं, एक तो वही आता है जिससे आप बचना चाह रहे हैं कि मैंने पिसाई जो है वो पैसों में देनी है, गंदम में नहीं देनी। दूसरा मसला ये आता है कि गंदम या चक्की वाला कहता है कि भाई आप 40 किलो मुझे दे रहे हो तो मैं आपको 40 किलो आटा थोड़ी दूंगा, कुछ आटा जल जाता है, तो ये कटौती कहलाती है। इसका उर्फ है, अगर वो काटता है जितना उर्फ चल रहा है इस मार्केट में, तो उसका ये अमल जायज है। वो जो बात थी उजरत में आटा देना, ये वो नहीं कहलाएगी, ये एक जुदा चीज है, इसकी गुंजाइश है, लेकिन उजरत में ही जो ना वो गंदम दे देना या आटा दे देना, उसकी गुंजाइश नहीं है।
चलिए अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, अगर मेहमाना फजाने मदीना की बुकिंग करवाते हैं तो वो 1800 रुपए की सालाना है, घर में पहुंचता है, तो अगर मतबतुल मदीना से 100 रुपए का खरीद कर उसके घर में पहुंचा दिया जाए, वो ऊपर वाले जो 50 रुपए वो अपने पास रख सकता है कि वो आने जाने का उसका पेट्रोल भी लगेगा, शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
देखें, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं ना, वो समझ रहा है ये तो जो ना वो वैसे मेरा पड़ोसी है, वैसे लेकर आ रहा है, और मुझे जो ना वो उतने इलाके दे रहा है जितने का मिला है इसको, उसके साथ तो हो गया धोखा। ये तो आपने मुकाया नहीं उसके साथ कि भाई मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ लेकिन बीच में से खुद भी रख रहा हूँ ना। मानामा वालों ने आपको कहा कि आप हमारे लिए काम करो, या तो ये होता कि आप इनके नुमाइंदे बनके काम करते तो ये पैसे रखना जायज था। जो तरीका आप कर रहे हैं उस तरीके के मुताबिक पैसे रखना जायज नहीं है। हाँ, अगर वो खुद कहता है कि ठीक है मैं तो खुद नहीं जा पाता, आप मुझसे पैसे ले लिया करो, फिर ये जायज होगा। अब आपकी तरफ आते हैं, ओवर टू यू।
मुझसे फिकई जवाब तो आपने सारी जवाब जो
इंतजामी तौर पर
हमारी तरफ से यानी मजलिस महनामा फजाने मदीना की तरफ से ऐसा करना मना है कि कोई शख्स अपने तौर पर बुकिंग ले ले और फिर खुद ही डिलीवर कर।
आप ये कह रहे हैं कि वो 2 महीने पहुंचाएगा, फिर नहीं पहुंचाएगा,
2 महीने पहुंचाएगा, 3 महीने पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा, देर से पहुंचाएगा, तो वो शिकायत हमारे पास आती है। बाज़ोकात शिकायत आती है तो हम चेक करते हैं तो हमारे पास बुकिंग होती नहीं है, और फिर जब उस शख्स को पता चलता है कि जी ये तो इदारे से बुकिंग नहीं हुई भी है, तो आपका भी इमेज डैमेज होता है।
अच्छा, एक सवाल
जी,
आपने भी बड़े सवाल किया आज मुझसे, पाकिस्तान में कोई माहनामा है या मैगजीन हफ्तावार है जो इतनी बड़ी तादाद में छपता हो जितना आपका छपता है? यस या नो कीजिएगा।
नहीं
नहीं, कोई
नहीं।
क्या बात है।
चले, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अहकाम-ए-तिजारत, अहकाम-ए-तिजारत।